تقصير ولقد نادانا اور تحقیق نادانا پکارا تھا نہ ہم کو نادانا پکارا تھا ہم کو نوح نوح علیہ السلام نے فلنعمہ فاپس لام البتہ نعمہ کتنا اچھا کتنا بہترین المجیبون ہم جواب دینے والے ہیں مجیبون مجیب کی جمع ہے جواب دینا یہاں پہ اللہ رب العزت کا انداز جو ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہے بڑا ہی بہترین ہے کیونکہ یہ جو نوح علیہ السلام نے پکارا اور اللہ نے جواب دیا اور بہترین جواب دیا یہ پکار عام پکار نہیں ہے اور یہ جواب بھی عام جواب نہیں ہے تو وَلَقَدْ نَادَانَا اور تحقیق پکارا تھا ہم کو اور ہم سے مراد کون ہے اللہ تعالی اور یہ پکار جو ہے یہ نوح علیہ السلام کی فریاد ہے نوح علیہ السلام نے فریاد کی اور کب یہ فریاد کی جب نوح علیہ السلام نے ایک طویل زمانے تک اپنی قوم کو جو ہے وہ توحید کی دعوت دی آخرت پر ایمان لانے کی ان کو تاکید کی اور قوم ایسی تھی کہ وہ انکار ہی کرتی رہی آپ کو پتہ ہی ہے کہ عراق میں دریائے دجلہ اور فرات کا درمیانی علاقہ آپ کی تبلیغ کا مرکز تھا آپ کی قوم تھی بت پرست بڑی ضدی اور بڑی ہٹ درم 50 کم 1000 سال آپ نے اپنی قوم کو دعوت دی اور آپ کی قوم کو جو آپ نے دعوت دی تو آپ کی قوم میں سے چند لوگ ایمان لائے بعض کہتے ہیں صرف 40 لوگ جو تھے وہ ایمان لائے آپ دیکھ لیجئے اللہ رب العزت جو ہیں قرآن میں ہمیں رہنمائی کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جو تھے انہوں نے اپنی قوم کو کیسے پکارا تھا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا سورۃ نوح آیت نمبر 5 سے آپ پڑھنا شروع کریں کہتے ہیں میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو رات اور دن تیری طرف بلایا فلم یزدہم دعائی الا فرارا مگر میرے بلانے سے یہ بھاگ گئے اور بڑھتے ہی گئے فرار میں اضافہ ہوتا چلا گیا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ اور بے شک جب میں نے ان کو بلایا لِتَغْفِرَ لَهُمْ تاکہ تو انہیں بخش دے جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں اپنے کانوں میں ڈال لی وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا وَأَصَرُّوا اور اڑ گئے وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا اور سرکشی اختیار کی سرکشی اختیار کرنا ثم انی دعوتہم جہارا پھر میں نے ان کو بآواز بلند پکارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا اور بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی کہا تو سورۃ نوح آیت نمبر 5 سے لے کر آپ آیت نمبر 9 کو اگر پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی قوم کو صبح و شام دن رات اعلانیہ بھی اور پھر چھپ چھپ کے بھی ہر طرح سے پکارا اور قوم جو تھی وہ کیا کر رہی تھی جوں جوں آپ پکارتے جا رہے تھے تو ان کا جو ہے وہ کفر کرنا اور کفر میں اصرار کرنا اور پھر کبر کرنا وہ بڑھتا ہی چلا گیا سورہ شعرا آیت نمبر 117 اور 118 میں بھی آپ اس کی جو ہے وہ تفصیل پڑھ چکی ہیں اور پھر سورت نوح آیت نمبر جو ہے وہ اگر آپ پڑھیں اس کی آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 اس میں حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کیا فریاد کرتے ہیں کہتے ہیں وَقَالَ نُوحٌ اور کہا نوح علیہ السلام نے ربی اے میرے رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا اے میرے پالنے والے تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ بنا کسی کو چلتا پھرتا نہ چھوڑ اور کیا کہا इन्नका इंतजर हूं, अगर तू इन्हें छोड़ेगा, यू दिल्लू इबादा का तेरे बंदों को गुमराह कर देंगे, वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफारा, और इनके हाँ जो बाल बच्चे होंगे तो वो भी बदकार और नशुक्रे होंगे, जो बचेगा तो वो भी कुफर करने वाला होगा और कुफर में बहुत बढ़ावा होगा। सूरत नूह आयत नंबर 26 और 27 में जो है हमें पता चलता है कि इन्होंने अल्लाह से ये फरियाद की, इन्होंने अल्लाह ताला से ये बात बताई। और सूरत कमर की अगर आप आयत नंबर 10 पढ़ें तो वहां भी इनकी इस फरियाद का पता चलता है, फदा रब्बहू, फिर उन्होंने अपने रब को पुकारा, अन्नी मगलूबुन, मैं मगलूब हूं, फंतसिर, अब तू मेरी मदद को पहुंच। और आप देख लें कि उनका वो 950 साल का तकरीबन जो अरसा है दावत का, तो क्या क्या कौम ने उनके साथ किया होगा और क्या क्या कौम ने उनको जो है वो कहा होगा। तो ये फरियाद उन्होंने तब की जब वो अपनी ताकत का आखिरी कतरा निचोड़ चुके थे, पूरी कुव्वतें पूरी सलाहियतें अपने अपने हर तरह के तरीके जो दावा के हो सकते हैं वो इख्तियार कर चुके थे और एक अरसा तवील गुजर चुका था। तो उस वक्त उन्होंने अल्लाह ताला से फरियाद की, वलकद नादाना, और तहकीक पुकारा हमको, हमको किसको पुकारा, अल्लाह ताला को पुकारा, किसने, नूह, नूह अलैहि सलाम ने, और नूह अलैहि सलाम कौन थे, अल्लाह ताला के एम्बेसिडर, पैगंबर, अल्लाह ताला के पैगाम लाने वाले थे, यहाँ पे अल्लाह की तरफ अल्लाह के सफीर थे। और जब उन्होंने अल्लाह ताला को पुकारा, फलानिम मुजीबून, अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़े खूबसूरत अंदाज में फिर बताते हैं कि बस हमने कितना खूबसूरत जवाब दिया, हमने जो जवाब दिया तो हम कितने अच्छे थे जवाब देने वाले। तो जिस तरह फरियाद बड़ी जबरदस्त थी, जिस तरह फरियाद में दर्द था, एक तकलीफ थी, उसी तरह हमने फरियाद जो है उसकी सुनवाई की, हमने उसको कबूलियत बख्शी, हमने नूह की फरियाद जो है वो उसका उसको सुन लिया। तो मुजीबून, मुजीब की जमा है, इसम फाइल का सीगा है, तो क्या है कि हमने उसका जवाब दिया। और आप देखें कि अल्लाह का जवाब तो कितना जबरदस्त था, क्या था जवाब अल्लाह ताला का, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है फरमाते हैं, मैं नजीना हूं, और हमने उसको निजात दे दी, हमने उसको बचा लिया, वह आहलाहू, और उसके घर वालों को, और उनके घर वालों से मुराद ईमान लाने वाले लोग हैं, किससे बचाया, मिनल करबिल अजीम, कर्ब मुसीबत को कहते हैं, और यहाँ पे ये इस मस्दर है, बड़ी मुसीबत, और कर्ब जो है फिर इससे मुराद क्या है कि जो भी उनको दुख था, दर्द था, और वो दर्द और दुख किस चीज का था, आपका दावत देना और कौम का इनकार करना, कौम का जो है वो जुल्मोसितम करना, कौम का मजाक उड़ाना, कौम का बुराइयों और शिर्क में मुब्तिला रहना, कौम का दुनिया के लिए जीना। एक तो ये कि जाहरी तौर पर दीन इस्लाम को कबूल करने की बजाय कौम का जो इनकार का रवैया था उसको देखकर जो आपके दिल में घुटन होती थी, तर्क क्या था, दिल घुटता था, दिल जो था वो रिश्ता था, परेशान होता था कि ये मेरी कौम जो है वो क्यों बुराइयों में जो है वो उलझी हुई है, कौम क्या कहती थी, वकालू मजनूनू वुजदजिर, और दीवाना बतला कर झिड़क दिया गया था, वुजदजिर। सूरत कमर आयत 9 से क्या पता चलता है कि कौम जो थी वो आपको झिड़कती थी, तकजीब ही नहीं की बल्कि झिड़का, डराया, धमकाया, और कौम क्या कहती थी, लइल्लम तंतही या नूहू लतकूनन मिनल मरजूमीन, सूरह शोरा आयत 116, कि नूह अगर तू बाज न आया तो तुझे संसार कर दिया जाएगा। अब सोचें कोई हो मुसलेह, कोई हो खैरखा, कोई हो प्यार करने वाला, और कोई अपनी जवानी, अपनी सलाहियतें, अपने औकात, अपना सारा कुछ अपनी कौम के लिए कुर्बान करने वाला हो और कौम उसकी कदर ही ना करे, कौम उससे प्यार ही ना करे, कौम सीधे मुंह से बात ही ना करे, उल्टा उसको अपना दुश्मन समझने लगे, उसके कत्ल के दर पे हो जाए, उसको निकालने के दर पे हो जाए। तो बात क्या है, तो ये था कर्ब। कर्ब कौम के, कौम का इनकार और इनकार में जो शिद्दत थी। और कर्ब एक और भी था, और वो कर्ब क्या था कि जब नूह अलैहिस्सलाम ने जो है वो अल्लाह को पुकारा था, तो बदकिरदार और जालिम कौम जो थी उसको अल्लाह ताला ने जब अपने अजाब से जो है वो डबो दिया, उसको सफाई हस्ती से मिटा दिया, जब आसमान और जमीन दोनों ने मिलकर पानी पानी कर दिया, तो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम और उनके ऊपर जो ईमान लाने वाले वो तकरीबन जो 40 लोग थे, अल्लाह ताला ने उनको जो है वो बचा लिया। और कैसे हुआ था, फफतहना अबवाब समाई बिमाइन मुनहमिर, सूरह कमर आयत 11 से आप पढ़ सकती हैं, वफज्जरनल अर्द अयुनन फल्तकल माउ अला अम्रिन कद कुदिर। और फिर आखिर में अल्लाह ताला कहते हैं फकैफ कान अज़ाबी व नुज़ुर। तो सूरत कमर आयत 11 से, अब फिर इसी तरह सूरत नूह जो है उसको अगर आप पढ़ें तो अल्लाह ताला क्या बताते हैं कि जब उन पर, जब वो डूब रहे थे, जब पानी में थे और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में चल रही थी और आपके ऊपर जो ईमान लाने वाले थे, तो सूरत नूह आयत नंबर अगर आप 25 जो है इसको पढ़ें, मिम्मा खती आतेहिम उग्रेकू, ये लोग अपने गुनाहों की वजह से डुबो दिए गए, गर्क कर दिए गए, और सिर्फ डुबोए नहीं गए थे, फउदखिलू नारा, आग में दाखिल कर दिए गए, फलम यजिदू लहुम मिन दूनिल्लाहि अंसारा, और अल्लाह के सिवा उन्होंने अपना कोई मददगार जो है वो ना पाया। तो इससे भी जो है वो क्या बात पता चलती है कि कहां एक तरफ जो है वो कौम डूब रही है और दूसरी तरफ जो है डूबने के बाद उसको दाखिल कर दिया गया है आग में। अब कितना कर्म की बात है, कितने अफसोस की बात है, कितने गमजदा होने की बात है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम जो है ईमान ना लाई और पानी में जो है वो गर्क करने के बाद उसको आग में दाखिल कर दिया गया। तो ये चीज जो थी ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए ये बड़ी ही गमजदा उनको करने वाली थी, ये बड़ी ही तकलीफ दे चीज थी। फिर इसी तरह आप देखें कि जब कश्ती में ये जा रहे थे अपने अहले ईमान साथियों के साथ, कश्ती इनकी चल रही थी, तो इनकी आंखों के सामने इनका बेटा भी था, वाहिया तजरी बहिम थी मोजिन कल जिबाल, सूरत हूद आयत 42 से आप पढ़े, वो कश्ती उन्हें लेकर मौजों में पहाड़ की तरह जा रही थी, वनादा नूह इब्नहु, और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा, वकाना फी माज़लिन, और वो एक किनारे पे था, आपने क्या कहा, या बुनैया, ए मेरे बेटे, इरकब माना, हमारे साथ सवार हो जा, वला तकुम माल काफिरीन, और काफिरों में शामिल ना हो, आला सआवी इला जबलिन, कहने लगा मैं इस पहाड़ पर पनाह ले लूंगा, या से मुनी मिनल मा, ये मुझे पानी से बचाएगा, قال لا عاصم اليوم من امر الله, नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा आज अल्लाह के अमर से बचाने वाला कोई नहीं, इल्ला मर रहीम, सवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम करे, وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ, और उन दोनों के दरमियान मौत जो थी वो हायल हो गई, فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ, और वो डूबने वालों में से हो गया, बाप के सामने बेटा जो है वो डूबने वालों में शामिल हो जाए, तो क्या ये बाप के लिए कम कर्ब की बात है, कितने दुख और तकलीफ की बात है, वकील या अर्द बलई माकी व यसमा अक्ली वगीद अलमा वकुदी अलअम्र वस्तवत अलल जूदी वकील बुदल लिलकौम الظالمين। तो आप सूरत हूद में भी इसकी तफसील पढ़ सकती हैं कि वो क्या कर्ब था जो उनकी आंखों ने देखा था। आप में से कभी किसी को पानी में जाने का इत्तफाक हुआ हो, किसको हुआ, अक्सर लोग पानी में गए हैं और कश्ती का सफर या फिर यहाँ पे जहाज वगैरह में आप बैठ कर जाते हैं, तो आप देखें कि कभी आप सफर में गए हों और वहां पे तुगयानी आई हो और बाज लोग चीखे मारते हैं, बाज लोग रोते हैं और बाज लोग पानी में पांव भी नहीं रखते, डरते हैं, है ना। मेरी एक स्टूडेंट थी, क्लास में आती थी न्यूयॉर्क में, तो उनका बेटा एक बार स्विमिंग करने गया था और फिर डूब गया। आम जो होते हैं, है ना, बाज अवकात जब किसी की मौत लिखी होती है तो इंसान, क्योंकि आम तौर पे दुनिया में अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं तो आप खुश्की पे चलते हुए ये कहते हैं कि गाड़ी रोक दी जाए, मुझे डर लग रहा है या तबीयत खराब हो रही है। लेकिन पानी में अगर कोई शख्स डूबने लगा है तो कश्ती कहाँ जाएगी, जहाज कहाँ जाएगा, और कोई कहने पर रोकता भी नहीं। आप कितनी भी चीखे क्यों ना मारे, तो फिर कहाँ होता, क्या होता है इंसान के साथ, डरता है, पुकारता है, रोता है ना। तो डर और खौफ की कैफियत जो है उसका अंदाजा होता है। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो बता रहे हैं कि वह नजैनाहू अहलहू, हमने नूह अलैहिस्सलाम को भी बचाया और उनके घर वालों को। किससे बचाया, मिनल कर्बिल अजीम, कर्ब ही काफी है, दुख तकलीफ आंखों से, वो जो अपनी कौम का हाल देख रहे थे, कौम का जो जुटलाना था, और दूसरी तरफ वो जो डूबने वाला, जो डूब गए लोग और नूह अलैहिस्सलाम और आपके साथी जो थे वो बचा लिए गए, है ना। और कर्ब कर्ब नहीं था सिर्फ, बल्कि क्या था, अल अजीम, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। सदमात तकलीफें सह सह के इंसान जो है वो दुबला हो जाता है, कमजोर हो जाता है, बाज़ औक़ात उसको भी मौत आ जाती है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब नूह अलैहिस्सलाम ने फरियाद की तो हम थे नूह अलैहिस्सलाम और आप पर ईमान लाने वालों को बचाने वाले। अब यहाँ पे आप ये देखें कि ये बात क्यों बताई जा रही है। यहाँ से सूरत साफात की आयत नंबर 73 से जो है अब 7 नबियों के वाकयात और उनकी कौम के हालात बताए जा रहे हैं, 7 अंबिया के हालात और कौमों के वाकयात बताए जा रहे हैं। और क्यों, ये अहले मक्का को इबरत दिलाने के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को तसल्ली देने के लिए कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ ईमान लाने वालों, अहले मक्का ने जिस तरह आपको कर्ब में डाल रखा है, जो आपके साथ ये सलूक कर रहे हैं और आपका जो इनकार कर रहे हैं, तो मेरे पहले जो नबी हैं वो भी शदीद अजियत से गुजरे हैं, और जो कौमें भी बदकिरदार रही और जालिम बनी मुसलसल जिन्होंने मुखालफत की, तो उनको हमने सफाई हस्ती से मिटा दिया। तो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको और आपके साथियों को भी कर्ब अजीम से बचा लेंगे, नजैनाहू वअहलहू मिनल कर्बिल अजीम, जैसे नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को बचाया था। तो अहले ईमान को यहाँ पे तसल्ली दी जा रही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अहले ईमान को, आपको और आज के दौर के मुसलमानों को भी। वजअलना ज़ुर्रियतहू, और हमने बना दिया उसकी औलाद को, वजअलना और हमने बनाया ज़ुर्रियतहू इसकी औलाद को हुमुल बाकीन, बाकी रहने वालों में। इसका मतलब क्या है, इसके दो मानी हो सकते हैं। एक मानी तो इसका यह है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो लोग मुखालफत कर रहे थे उनकी नस्ल दुनिया से मिटा दी गई और नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल जो थी वो बाकी रही, है ना। क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम जो हैं उनकी जो उनके साथी जो बचा लिए गए, तो कौन बचाए गए, जो कि ईमान लाने वाले थे। और कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम के थे कितने बेटे, 4 बेटे। एक बेटा तो जो है वो डूब गया और 3 बेटों से आपकी नस्ल चली। एक बेटे का नाम साम था, अहले अरब और अहले फारिस के लोग जो है ना ये उनकी नस्ल से हैं। दूसरे बेटे का नाम हाम था, इनसे अफ्रीकी ममालिक की आबादियां दुनिया में फैली। बाज कहते हैं हिंदुस्तान के बाशिंदे जो हैं वो भी इसी नस्ल से हैं। तीसरे बेटे का नाम याफिस था, या अलिफ फा सा, इनसे तुर्क मंगूल याजूज माजूज की नस्लें निकली। और फिर बाकी जो थे वो क्या हुआ कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जो लोग सवार होकर तूफान से बच गए थे, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के इन 3 बेटों के सिवा किसी और की नस्ल नहीं थी, क्योंकि इन 3 बेटों में से जो ईमान लाए थे जो लोग, तो वो आपके साथ थे। और आम अहले ईमान भी हो सकते हैं जो सोसाइटी में थे। बहरहाल तो इससे जो है फिर क्या बात पता चलती है कि अल्लाह ताला ने आपकी औलाद को जो है वो आपकी नस्ल को बाकी रखा। फिर इसके बाद जो है एक और बात भी हमारे सामने आती है, और वो क्या है کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے چھوڑ دیا، علیہ، علیہ کی ضمیر جو ہے وہ کس کے لیے آئی ہے؟ اس کو، اور چھوڑ دیا ہم نے اس کو، فی الآخرین، پیچھے آنے والوں میں، ہے نا؟ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ چھوڑ دیا ان کو، یعنی بعد کی نسلوں میں نوح علیہ السلام کی تعریف، ان کی توصیف جو تھی وہ چھوڑ دی. تو یہاں پہ علیہ ہا کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ نوح علیہ السلام کے لیے ہے کہ ہم نے چھوڑ دی نوح علیہ السلام کی تعریف پیچھے آنے والوں میں. آخر، آخر، آخری کو کہتے ہیں نا، بعد کی جو نسلیں ہیں. اور آپ اگر غور کریں تو اس سے جو ہے پھر ہمارے سامنے کیا بات آتی ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو لوگ پیچھے آئے ہیں تو ان میں نوح علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر خیر ہے. پیچھے آنے والے جو ہے نوح علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ نوح علیہ السلام جو ہیں ان کو تمام قومیں مانتی ہیں. آپ یہاں کی لائبریریوں کو بھی دیکھیں تو نوح علیہ السلام کی کشتی اور اس طوفان اور قوم کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے نا. تو یہ ہے کہ پچھلی نسلوں میں ان کا ذکر جو ہے وہ چھوڑ دیا. اچھا، یہ آیت نمبر جو 77 ہے، 77، اس میں میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ نوح علیہ السلام کی نسل باقی رکھی گئی جو ایمان لائے تھے. دوسرے اس کے معنی کیا تھے؟ کہ نوح علیہ السلام جو ہیں ان کی اولاد سے جو تمام دنیا آباد کی گئی، صرف یہ نہیں سے مراد، بلکہ اللہ ہی جانتا ہے کہ جو نسل باقی رکھی گئی وہ کس کی تھی، یعنی نوح علیہ السلام کی بھی اور باقی جو ایمان لانے والے تھے، ہے نا؟ تو کیونکہ وہ بھی تو انہی کی ذریت ہے نا. پہلے پیغمبر جو بہت دلیل القدر تھے اور جن سے نسل چلی دنیا میں، آدم علیہ السلام تھے. دوسرے بڑے پیغمبر ہمیں کون نظر آتے ہیں اور ملتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور صالح علیہ السلام بھی ہیں، لیکن نوح علیہ السلام کا یہ ہم ذکر پڑھ رہے ہیں. تو بہرحال یعنی آپ کی اولاد میں سے یا پھر جو بھی ایمان لانے والے تھے. تو اور پھر ان کا ذکر جو ہے وہ تمام قوموں میں باقی ہے. آیت نمبر 79 میں ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ سلام علی نوح فی العالمین. بڑی خوبصورت بات ہے کہ سلام ہو نوح علیہ السلام پر تمام دنیا والوں میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی دنیا جو ہے وہ نوح علیہ السلام کا ذکر کرتی ہے، اور بڑی محبت سے کرتی ہے، بڑی پیار سے کرتی ہے. تو دراصل یہ آیت جو ہے، یہ آیت، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو شابش دی جا رہی ہے، تحسین کی جا رہی ہے کہ اے نوح تجھ پر آفرین ہے نوح علیہ السلام. اور یہ جو آفرین اور شابش اور تحسین ہے، کس پر ہے؟ نوح علیہ السلام پر. یہ شابش اللہ تعالیٰ نے کیوں دی؟ یہ تعریف اللہ تعالیٰ نے کیوں کی؟ مسلسل آزمائش میں ڈالے گئے، آزمائش میں پورا اترے تو کندن بن گئے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کا ذکر بعد والوں میں چھوڑا، ان کی نسل سے دنیا میں نسل چلائی، اور پھر ان کو جو ہے العالمین، عالم جو ہے اس سے عالمین ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ تمام جہانوں میں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی آپ کے لیے برکت اور سلامتی کی بشارت ہے. جو مقام دنیا میں آپ کو حاصل ہوا، اس سے پہلے نہیں کسی کو بھی حاصل ہوا تھا. دنیا میں آپ نے جو بازی جیتی، آپ کے علاوہ اور کسی نے وہ بازی جو ہے وہ نہیں جیتی. تو گویا کہ یہاں پر جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو شاباش دے رہے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ. بے شک ہم اسی طرح نجزی جزا دیتے ہیں، جس کو المحسنین، احسان کرنے والوں کو. محسن کی جمع ہے محسنین، اور محسن جو ہے کسے کہتے ہیں؟ حاسین نون سے یہ لفظ نکلا ہے، حسن. اور حسن جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خوبصورت. تو نیکی کو ظاہری طور پر بھی اچھا کرنا، اسی سے حسنہ، حسنات، اور احسان کے درجے کی نیکی. اور جبرائیل، حدیث جبرائیل میں آپ نے پڑھا تھا نا احسان کی تعریف کیا ہے، آپ میں سے کون بتائے گا عربی متن میں احسان کی تعریف کیا ہے؟ اصل بات کیا ہے کہ یہ جو تعریف ہے ہمیں جیسے کبر کی ہے یا احسان کی ہے یا ایمان کی ہے یا مسلم کی ہے، مختلف تعریفیں اب تک آپ پڑھ چکے ہیں، اب آپ کو وہ نا متن کے ساتھ آپ کو ایٹ لیسٹ زبانی یاد کر لینی چاہیے کیونکہ کلاس اینڈ کی طرف اب جا رہی ہے نا. تو احسان کی تعریف جو ہے جو آپ نے اب یاد کرنی ہے اور بعض لوگوں نے کی بھی ہوگی تو آپ نے سنانی ہے، لیکن ہے کیا کہ پہلا اس کا درجہ احسان کا یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام کریں تو اس طرح کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ ایسا نہ کر سکیں تو پھر کیا کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو اصل بات کیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 50 + 1000 سال گزارے تو آپ کا عمل کیسا تھا کہ میں اللہ کی نظروں میں ہوں، اور آپ کا تعلق اللہ سے بہت قریبی تعلق تھا. اور یہ احسان کے درجے کی نیکی بڑی مشکل ہوتی ہے لیکن بڑی خوبصورت ہوتی ہے، بڑی بہترین ہوتی ہے. اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ انسان دائیں بائیں آگے پیچھے ہر ایک سے بے نیاز ہوتا ہے. یہ کوالٹی نیکی ہے، کوالٹی دی بیسٹ نیکی. اور دی بیسٹ نیکی اس کا معیار کیا ہے کہ انسان جو ہے اپنی دل میں اس کے یہ نیت ہو کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، میرا جو کچھ بھی عمل ہے، میرا جو بھی رویہ ہے، میرے اللہ کے لیے ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر ایسا نہ کر سکیں تو پھر کیا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے، ہم کب ایسے کہتے ہیں کہ میرا اللہ جانتا ہے؟ جب کوئی ہماری سچائی کو تسلیم نہیں کرتا، جب ہم جو نیکی کر رہے ہوتے ہیں ہمیں لوگوں سے اس کا جب بدل نہیں ملتا نا، شاباش نہیں ملتی، ہم سے لوگ پیار نہیں کرتے، ہمیں لوگ سراتے نہیں ہیں، ہماری تعریف نہیں کرتے، تو ہم کہتے ہیں، ہم بہت دکھی ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا اللہ تو جانتا ہے نا، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا میرا کیا حال ہے، میں کیا کر رہی ہوں، میرا اے اللہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، میرے دل کے اندر کیا ہے. تو آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. لیکن میری پیاری بہنوں، اینڈ پر نہیں، جب دنیا نہ مانے، آغاز میں ہی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے کہ اللہ میں جو کچھ بھی ہوں میں تیرے لیے ہوں، اور جو کچھ بھی کرے اللہ کے لیے کرے. کوئی تعریف کر رہا ہے کہ نہیں، شاباش دے رہا ہے کہ نہیں، سرا رہا ہے کہ نہیں، گلے میں پھولوں کے ہار ڈال رہا ہے کہ نہیں، آپ کو ویلکم کر رہا ہے کہ نہیں، شاباش دے رہا ہے کہ نہیں. اور اگر میرے اور آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے پھر ہمارے اندر استقامت اور تسلسل آ جاتا ہے. پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ تو دعوت کو قبول ہی نہیں کر رہے، لوگ تو درس میں آتے ہی نہیں، اب میں نے بھی دعوت دینی. پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ اتنا ستا رہے ہیں، چلو میں یہ اب کام کرنا چھوڑ دیتی ہوں، میں برقع پہننا چھوڑ دیتی ہوں، اب میں نے نمازیں نہیں پڑھنی، اب میں نے اور عبادت کے کام نہیں کرنے، اب میں نے صدقہ اور خیرات نہیں کرنا، میں جتنا کرتی ہوں اتنا یہ لوگ مجھے باتیں بناتے ہیں اور ذرا میری قدر نہیں کرتے. اتنی میں گھر میں صفائی کرتی ہوں، نہ شوہر قدر کرتا ہے نہ بچے قدر کرتے ہیں، میں نے اپنے آپ کو ان کے لیے ہلکان کر لیا، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں. پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ جو نیکی کر رہے ہوتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. میں جو نیکی کر رہی ہوتی ہوں اس کے اندر جو ہے وہ ایک وقفہ آ جاتا ہے. پھر میں سوچتی ہوں کہ نہیں یہ مشکل ہے کیونکہ انہوں نے میری قدر ہی نہیں کی. میں نے اپنی زندگی کے 20 سال 25 سال میں نے، میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسا کیا اور سسرال والوں نے ایسا کیا اور میں نے اتنا حسن سلوک کیا، تو اب ٹھیک ہے، اب میں بھی ڈنکے کی چوٹ پر جو ہے میں بھی اینٹ کا جواب اینٹ سے دوں گی، پتھر کا بلکہ اینٹ سے دوں گی، ہے نا. یہ ایک کہیں گے میں 4 سناؤں گی ان کو، اب میں بھی ان پہ بتاتی ہوں کہ پھر کیسے کرتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں نہیں ان لوگوں نے میری کوئی قدر نہیں کی نا. پھر آپ کیا کرتے ہیں اور میں کیا کرتی ہوں، وہ بڑی محنت سے جو ہم احسان کے درجے کی نیکی پر اپنے آپ کو جمائے ہوئے تھے، ہم نے وہ احسان کی روش پر چلنا چھوڑ دیا، ہم نے پھر نیکی کرنا چھوڑ دیا، ہم نے صبر کے دامن کو چھوڑ دیا. تو یہاں عمل کا کیا اصول نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا کذالکا، بے شک ہم نے، کذالک جو ہے اس کے معنی کیا ہے، اسی طرح نجزی المحسنین، ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ان کو، محسنین کو. حضرت نوح علیہ السلام تو محسن تھے ہی، ہے کوئی آپ میں سے بھی جو محسن بننا چاہتا ہے؟ ہے آپ کے جو سینے میں دل اس کے اندر اتنی قوت اور جان ہے کوئی اس بات آیت کا جو ہے وہ جواب دینے والا کہ ہاں اے اللہ میں ہوں احسان کے درجے کی نیکی کرنے والی، میں احسان کی روش اختیار کروں گی. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ تو جو بھی उस जमाने में, आज के दौर में, रसूल अल्लाह के जमाने में जो भी एहसान के दर्जे की नेकी करेगा तो अल्लाह ताला कहते हैं हम एहसान के दर्जे की नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं, ऐसा ही बदला दिया करते हैं। कोई सिद्दीक बनता है, कोई मुआज बिन जबल बनता है, कोई उम्र फारूक बनता है, कोई सात दिन मुआज बनता है, रहमान का अर्श जो है वो हिल जाता है उनकी वफात पर, 70,000 फरिश्ते उनके जनाजे में शिरकत करते हैं, है ना। तो रजी अल्लाह अन्हुम सहाबा और सहाबिया जो भी एहसान के दर्जे की नेकी करने वाले थे। तो असल बात यह है कि मुझे और आपको भी मोहसिना बनना है, मोहसिना एहसान के दर्जे की नेकी करनी है। तो इससे हमारे अंदर क्या पैदा होगा, इस्तकामत आएगी, नेकी में तसलसल आएगा, और फिर दुनिया तो तारीफ करे या ना करे हमें ये चीज तसल्ली देगी कि मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है ना, मैं अल्लाह ताला की निगाह में हूं, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, खलवत जलवत तन्हाइयां सबका मेरा और आपका अल्लाह साथी बन जाएगा। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन। मेरी प्यारी बहनों, ये आयतें बड़े गौर करने वाली हैं, बड़ा इख्तसार है लेकिन मजमून के लिहाज से बड़ी जामियत है, अल्फाज के लिहाज से इख्तसार है। सालों की कहानी को जो है वो चंद जुमलों में अल्लाह ने समेट कर रख दिया है, मानी का एक समंदर कूजे में बंद कर दिया है। अल्लाह ताला कहते हैं इन्नहु, बेशक नूह अलैहिस्सलाम इन इबादिना हमारे बंदों में से था। अब्द की जमा है इबाद, अब्द कौन होता है, बंदगी करने वाला, अताअत करने वाला, मेरे हुक्मों पर चलने वाला, उनको हिरदे जहां बनाने वाला, वो मेरा बंदा था और मेरे बंदों में से एक था, इबादिना। और सिर्फ बंदा ही नहीं था, अल मोमिनीन हकीकी मोमिन था, ईमान लाने वाला था। तो नेकी क्यों उसने एहसान के दर्जे की नेकी इख्तियार की कि दर हकीकत वो हमारे बंदों में से था और बंदे भी मोमिन, मोमिन की जमा है मोमिनीन। सुम्मा अगरकनल आखरीन, सुम्मा फिर अगरकना हमने गरक कर दिया, गरक का होता है कोई खुद डूब जाए, अगरकना हमने डबो दिया, तो हमने जो है डबो दिया किनको, अल आखरीन दूसरे ग्रोह को। आखिर आयत 78 में आखिर आया है, तो आखिर के माने क्या होते हैं, आखिरी, एंड आखिरी बात, और आखिर अव्वल और आखिर, आखिर दूसरे के माने में आता है दूसरा। तो दूसरा ग्रोह जो था उसको हमने गरक कर दिया, और दूसरा ग्रोह कौन सा ग्रोह था, ये ग्रोह था काफिरों का, ये वो ग्रोह था जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को झुठलाया। तो अल्लाह ताला ने जो है उसको खसो खाशाक की तरह जो है वो गर्क कर दिया, फिर उनको आग में दाखिल कर दिया। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया जो है, इनकी कहानी मेरे और आपके लिए ये पैगाम लाती है कि हम भी जो हैं वो अपने अंदर क्या पैदा करें, सच्चा ईमान, फिर उसके बाद इबादत, फिर उसके बाद एहसान के दर्जे की नेकी, और एहसान के दर्जे की नेकी जो है जो भी अपने अंदर पैदा करेगा तो उसका मतलब ये है एहसान की असल रूह पूरे इखलास के साथ अल्लाह के अहकाम को बजा लाना कि मैं अल्लाह की निगाह में हूं, अल्लाह इज वॉचिंग मी, अल्लाह मुझे देख रहा है, ए अबू बकर गम ना कर अल्लाह हमारे साथ है, इस एहसास के साथ। तो ये हमें अपने अंदर पैदा करना चाहिए, तो जो भी ये सिर्फ पैदा करेगा अल्लाह ताला फिर उसका जिक्र खैर जो है वो बाकी रखेगा। अब आप देख लें कि दुनिया में जिसने भी इखलास के साथ नेकी की है अल्लाह ने उसको उसका जिक्र खैर दुनिया में भी बाकी रखा है, और आखिरत में जो अजर मिलने वाला है बाद की बात है। आप इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को देख लें, आप इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को देख लें, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद के लोग हैं ना। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कई वाकयात मिलते हैं, और उनमें से एक वाकया क्या था, समंदर का सफर कर रहे हैं और आप जा रहे थे हदीसें जमा करने के लिए, और आपके पास पैसे भी हैं, गालिबन शायद 1,000 दिनार थे, और ये जो आपका साथ वाला शख्स था ना उसको पता चल गया कि आपके पास पैसे है ना, और अब उसने जो है, आपकी बहुत ज्यादा उम्र तो नहीं थी, वो शख्स तेज था, उसने कुछ जब सफर गुजर गया तो उसने जहाज में जो है ना ये शोर मचाना शुरू किया कि मेरे 1,000 दिनार जो है ना वो गुम हो गए हैं, चीखना चिल्लाना शुरू किया। अब जहाज को रोका गया और उसके बाद जो है तलाशी जो थी वो ली गई। जब तलाशी लोग लेनी शुरू की, कैप्टन ने जो भी था और बाकी लोगों ने, तो हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो है अब क्या सोचने लगे कि एक तरफ मेरे पास 1,000 दिनार हैं, दूसरी तरफ अब ये शख्स मुझसे लेना चाहता है, तीसरी तरफ सारे जहाज के लोग जो है उनकी तलाशी हो रही है और मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है जिससे मैं ये साबित कर सकूं ये 1,000 दिनार मेरे हैं और मैं हूं हदीसे जमा करने वाला, और अगर ये 1,000 दिनार इस तरह से झूठ बोलकर, क्योंकि तलाशी में तो मेरे पास निकलेंगे, तो वो मुझसे ले लेगा, तो लोगों में ये मशहूर हो जाएगा कि बुखारी, इमाम बुखारी तो झूठे हैं और चोर भी हैं, क्योंकि वैसे कहा जा रहा था कि जिसने भी ले लिया दे दे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खामोशी से वो 1,000 दिनार समंदर की लहरों के सुपुर्द कर दिए, समंदर के अंदर फेंक दिए, समंदर के अंदर फेंक दिए। क्यों फेंक दिए? इसलिए कि वो ये नहीं चाहते थे कि 1,000 दिनार जो उन्हीं के थे, प्रूफ कोई नहीं है, और फिर लोग उनको झूठा कहें और फिर हदीस उनसे कैसे कबूल करेंगे, जो हदीसों का सरमाया उनके पास है, उनकी पूरी जिंदगी की कमाई जो है वो जाया हो जाएगी। जिंदगी में बहुत से ऐसे मौके आते हैं ना कि आप सच्चे होते हैं, अपने आप को सच्चा साबित नहीं कर सकते, आप रोने लगते हैं, आप बहुत दुखी हो जाते हैं, आप बहुत अफसरदा हो जाते हैं, लेकिन नेकियों को कभी जाया नहीं करना चाहिए, दौलत तो आनी जानी है। फिर क्या हुआ, तलाशी ली गई तो पैसे कोई ना निकले। अब वो वक्त जब गुजर गया तो फिर वो शख्स आपके पास आया, कहने लगा कि बस एक बात मुझे बताओ कि वो मैं झूठा हूं, तुम सच्चे हो, वो पैसे तो मैं तुमसे लेना चाहता था और कैसे लेता, मैंने ये एक तरकीब सोची थी, लेकिन एक बात बताओ कि वो पैसे कहां गए, ये बात बताओ पैसे कहां गए। उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने फिर सारी बात बताई कि इस तरह मैंने समंदर की लहरों के सुपुर्द कर दिए। तो आप देख लें इमाम बुखारी को दुनिया जो है वो आज याद करती है। तो एक अमल थोड़ी, एक हदीस लिखने से पहले वो नफल पढ़ा करते थे, है ना, गुसल करते थे, गुसल करते थे, नफल पढ़ते थे, और इसी तरह एक दफा हदीस लेने जो थे वो गए थे, वो थे या कोई और मुहद्दिस, तो उनके बारे में क्या आता है कि जिससे वो हदीस लेने गए थे दूर का सफर करके गए थे, और वो शख्स क्या कर रहा था कि जानवर के साथ उसने झूठ बोला। जानवर से झूठ कैसे बोला, कि उसने अपनी झोली को या अपने कमीज के दामन को जो है जानवर को ऐसे जाहिर किया कि उसमें चारा है, जब उसने यूं किया ना तो जानवर उसके पास भागा चला आया, और जब जानवर भागा चला आया तो ये देख रहे थे जो मुहद्दिस थे ना, देख रहे थे। अब जब वो फारिग हुआ और कहने लगा कि हाँ मुझे बताएं कि आपने इतना लंबा सफर क्यों किया मेरे पास, मैं ही आपके पास आ जाता, आपने तकलीफ क्यों की, तो आपने बताया कि मैं जो है ये हदीस लेने के लिए आया था, लेकिन अब मुझे हदीस लेने की जरूरत नहीं है। जो शख्स जानवर से झूठ बोलता है वो अल्लाह के नबी की हदीस को कैसे सच बता सकता है, इतना लंबा सफर, और उसके बाद जो है आप हदीस लिए बगैर जो थे वो वापस आ गए। तो असल बात क्या है कि ये जो है ना कि अल्लाह ताला मोहसिनीन को जो जजा देते हैं और दुनिया में उनका जिक्र खैर छोड़ देते हैं, तो जितना जिसके अंदर इखलास होता है ना, जितना जो अल्लाह की रजा के लिए करता है, एहसान के दर्जे की नेकी करता है, तो फिर क्या होता है कि अल्लाह उसका जिक्र खैर जो है दुनिया में छोड़ते हैं। बहुत से लोग हैं आप उनको जानती भी नहीं, आप मिली भी नहीं, आप उनसे मोहब्बत करती हैं। इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह, अरबईन नवी के बारे में देख लें, कहते हैं कि वो हदीसें जो थे वो क्या करते थे कि हदीसें जो थे वो जमा करते और बहुत सी दफा वो फाड़ देते थे अपने पेजेस। क्यों फाड़ देते थे, कहते थे कि ऐसा लगता है कि इसके अंदर जब मैं इसको जमा कर रहा था या ये जो मैंने इतना लिखा, मेरे अंदर इखलास नहीं था उस वक्त, और उसको फाड़ दिया कि कोई और रियाकारी का जज्बा तो नहीं था। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो भी यानी बाज़ुकात तकरीर करते करते चुप कर जाते थे, कि जैसे बाज़ुकात होता है ना कि दुनिया देख रही है और इतनी अच्छी मैं तकरीर कर रहा हूं, इतना अच्छा मेरा काम हो रहा है, तो इंसान के अंदर हया पैदा हो जाती है। तो ये वाक्या था हजरत हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुनिया में गुजरे हैं। तो मुझे और आपको क्या करना है, जितनी भी थोड़ी बहुत जिंदगी अब बाकी रह गई है, आइए अपनी जिंदगी में इखलास पैदा करें हर चीज में, एहसान के दर्जे की नेकी इबादात में भी हो, मामलात में भी हो, और हर अमल में हो।